लोगे तुम ऐसा बन जाओगे जैसा। ओम शांति। राजयोग के द्वारा आप लोगों ने शक्तियां प्राप्त की। कितनी शक्तियां प्राप्त की? अष्ट शक्तियां। ठीक है, उन अष्ट शक्तियों को जरा बोलेंगे कौन कौन सी शक्तियां हैं। देखो डायरियां खुलने लगी। बहुत अच्छा है, पहले ये डायरी खुलती है फिर बुद्धि की डायरी खुलती है। अच्छी बात है। हाँ, एक एक बोलो कौन कौन सी शक्तियां हैं। समेटने की, समाने की है, सहन शक्ति और परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति। हाँ, इधर से बोलो, सामना करने की शक्ति है, निर्णय का हो गया, और सहयोग की शक्ति, और कौन सी रहेगी लास्ट? क्षमा करने की थी, और हाँ समेटने की भी हो गई। तो ये सब जो शक्तियां हैं, अभी आप पिछले दो दिन से तो महसूस भी कर रहे होंगे, धारण भी कर रहे होंगे। और कोई भी चीज व्यवहार में कब आती है? व्यवहार में आना, कर्म में आना, वो है ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज। और सबसे पहले कोई भी बात होती है पहले कहाँ आती है? मन में आती है, संकल्प में आती है, सोचने में आती है। तो आज हम उसी बात पर ही आपस में विचार करेंगे कि व्हाट इज आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, यानी सकारात्मक सोचने की कला क्या है। और जितना जितना हम सकारात्मक सोचते चलते हैं उतना उतना जीवन में सकारात्मक होते चले जाते हैं। तो सकारात्मक सोचने की कला, क्योंकि जैसा सोचना होता है फिर वैसा क्या होता है? फिर वैसा ही बोल निकलता है। पहले संकल्प होता है, फिर बोल होते हैं, फिर कर्म होते हैं, वही व्यवहार में आता है, वही जीवन का एक अंग बन जाता है। तो सकारात्मक सोचने की कला क्या है उसके ऊपर विचार करते हैं। लेकिन सोचता कौन है? कौन सोचता है? हम सब कौन है? पहले दिन ही कल सुबह भी आपको बताया गया होगा ना, हम सब कौन है? आत्मा है। और आत्मा में कौन सी तीन शक्तियां होती हैं? वेरी गुड, मन बुद्धि संस्कार। आप तो एक ही दिन में सब एक्सपर्ट हो गए, बहुत अच्छी बात है। जितना जितना ये हमारा बुद्धि में बैठता जाएगा ज्ञान, उतना उतना व्यवहार में भी आता चला जाएगा। तो हम सब आत्मा हैं, और आत्मा में जो अलग अलग शक्तियां हैं, जैसा आप लोग बता रहे हैं ना, एक है मन, दूसरा बुद्धि और तीसरा संस्कार। तो सकारात्मक सोचने की कला भी तब आती है जब मन, जैसे बताया हुआ ना, इसमें मन जो है फेथफुल माइंड, मन आज्ञाकारी होता है तो जीवन में सकारात्मकता आती चली जाती है। अक्सर हम कह देते हैं क्या करें, मन बड़ा चंचल है, भाग जाता है, हम चाहते तो नहीं लेकिन विचार ऐसे ऐसे आ जाते हैं, बस मन को हम दोषी ठहरा देते हैं। तो आज विशेष करके हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे कि मन को कैसे और नियंत्रण में रखा जाए, मन जब फेथफुल हो जाता है तो फिर क्या होता है, बुद्धि मन जब सोचता है, सकारात्मक सोचता है, आत्मा के कहने पर चलता है, तो फिर बुद्धि भी वैसे ही जो होती है, इंटेलेक्ट जो होती है वो सरेंडर्ड, यानी कि बुद्धि भी आज्ञाकारी हो जाती है। और जब मन और बुद्धि दोनों आज्ञाकारी हो जाते हैं तो कर्म जो है वो भी हमारे अनुकूल चलते हैं जैसा हम चाहते हैं। तो मन जैसे मंत्री है, बुद्धि क्या है, सेनापति है, और संस्कार है सैनिक। तो मन मंत्री है और इन सब के ऊपर, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर है आत्मा राजा। तो आत्मा राजा जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है, कई मिनिस्टरों के द्वारा कार्य करवाता है, अलग अलग मिनिस्ट्री होते हैं, ऐसी आत्मा राजा है। मन जो है मुख्य जो है मंत्री, और बुद्धि सेनापति, संस्कार सैनिक। जितने भी संस्कार है वो सब सेनापति के अंडर में रहते हैं। तो ये जो तीन हैं, इनको कैसे हम फेथफुल बनाए, आज्ञाकारी बनाए, हमारे नियंत्रण में चले, हमारे कहने पर चले, इस बात के ऊपर आज विशेष करके हम सब लोग आपस में चर्चा करेंगे। और जितना मन हमारा आज्ञाकारी होता चला जाता है, उतना उतना हर चीज बिल्कुल अनुकूल होती चली जाती है। कैसे होगी ये सब अनुकूल, हाँ? मन बुद्धि संस्कार आज जो है, कैसे हमारे, ये इस चित्र के एक भाग में बताया गया है, मन बुद्धि संस्कार ये जो आत्मा के तीन अवयव हैं, मन। अब मन जो है एक सोचने की शक्ति का नाम है, और मन जब सोचता है तो कई बार नियंत्रण के बाहर चला जाता है। देख रहे ना, मन पत्थर फेंको तालाब में लहरें पैदा हो जाती है। तो इसमें ये जो लहरें बताई गई हैं, ये कोने, तो मन जो है जो सोचता है, कभी अच्छी बात सोचता है, कभी बुरी बात सोचता है। कोना होता है ना, कोने के पास से आप निकल जाएंगे तो कोना लगेगा, तो दुख का कारण भी कोना बन जाता है, छुपता है। तो ऐसे ही मन जो है, मन के विचार जो है, कभी कभी दुखदायी होते हैं, कभी सुखदायी होते हैं। और योग के द्वारा, ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा, उनको हम कैसे स्मूथ बना देते हैं, ये देख रहे हैं आप कि ज्ञान के, योग शक्ति के द्वारा, सकारात्मक चिंतन के द्वारा, किस प्रकार से मन की लहरें जो हैं वो कोने उसके जैसे खत्म हो जाते हैं, और मन की लहरें बिल्कुल सुखदायी हो जाती हैं। मन सोचने की शक्ति जो है वो हमारे नियंत्रण में पूरी तरह आ जाती है, और हम पॉजिटिव सोचते हैं। इसी प्रकार से कई बार क्या होता है, बुद्धि हम निर्णय नहीं कर पाते हैं, ये करें या ना करें, ऐसा करें या ऐसा करें, कई बात हो जाती है। तो इसलिए बुद्धि किस प्रकार से सदा हमारी ठीक रहे, संतुलन में रहे, सही समय पर सही निर्णय करे, जिसे यह तराजू से दिखाया गया है। तो सही समय पर सही निर्णय करे, ये है, जब सकारात्मक चिंतन होगा सकारात्मक निर्णय भी होंगे, और उसके साथ साथ फिर व्यवहार जो कर्म है, संस्कार है, वो उसकी तुलना जैसे पुराने जमाने के रिकॉर्ड से की गई है। यहाँ पर कई पुराने लोग बैठे हुए हैं, तो आजकल तो चलो सीडी है, डीवीडी है, टेप कैसेट्स वगैरह। पहले पुराने जमाने में याद होगा, जो बुजुर्ग हैं, एक हिज मास्टर वॉइस जैसे हुआ करता था, जिन्होंने वो ग्रामोफोन वगैरह देखा है जरा हाथ खड़ा करे। ओहो, बहुत काफी लोगों ने देखे हुए हैं। तो रिकॉर्ड होता था, रिकॉर्ड घूमता था, उसके ऊपर साउंड बॉक्स रख देते थे, सुई लगी होती थी और रिकॉर्ड घूमता रहता था, सुई ऊपर रहती थी तो फिर से उसमें आवाज निकला करती थी। और कभी कभी जब रिकॉर्ड बहुत पुराना हो जाता था तो क्या होता था, सुई फंस जाती थी अगर वहीं, तो बार बार वही आवाज आने लगती थी, रिपीट होती थी। तो वो संगीत प्रिय लगता है, जब अटक जाए नहीं लगेगा, कर्ण प्रिय नहीं लगेगा। बहुत अच्छी कोई आपका रिकॉर्ड है और बहुत एंजॉय कर रहे हैं लता मंगेशकर के सॉन्ग को, लेकिन वही अगर अटक जाएगा प्लीजेंट नहीं लगेगा। ऐसे कई बार क्या होता है कि हम पुरानी बातों को भुला नहीं पाते, बार बार न चाहते हुए भी वो बार बात बार बार मन में आएगी, बार बार कोई कष्टदायक बात होगी, बहुत कष्ट देती रहेगी, दुख देती रहेगी, और मनुष्य अपने पास्ट को भुला नहीं पाता है चाहते हुए भी। और योग के द्वारा क्या होता है कि ये जो आत्मा में ये रिकॉर्ड भरा हुआ होता है ना, ये रिकॉर्ड बिल्कुल स्मूथ जैसे देख रहे हैं आप, और फिर अगर स्मूथ होता है तो वो संगीत भी कर्ण प्रिय हो जाता है, उसको हम एंजॉय करते हैं। इसीलिए अब हमें ये देखना है कि किस प्रकार से ये मन बुद्धि संस्कार ये सब हमारे अनुकूल चले, हमारे नियंत्रण में रहें, और जितना जितना ये हमारे अनुकूल होते रहेंगे उतना उतना हम जीवन में सदा काल की सुख और शांति का अनुभव करते चलेंगे। तो आज इसी बात के ऊपर हम लोग आपस में विचार करेंगे। मुझे एक कहानी याद आती है व्यक्तियों की, जब सकारात्मक चिंतन सही चिंतन होता है। बचपन में हमने पढ़ी थी एक कहानी की, चार दोस्त थे, वो चार दोस्त बहुत बचपन के मित्र थे, गांव में रहते थे। एक बार उन्होंने सोचा कि गांव में इतना जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, नौकरी धंधे के इतने ज्यादा चांस नहीं है, चलो शहर में जाते हैं, कोई कला भी सीखते हैं और जिससे कि हमारा आजीविका अच्छी चले। तो वो मिले आपस में और उन्होंने निर्णय किया कि हम लोग बाहर जाएंगे शहर में और वहां से कला सीख करके आएंगे, और दो साल के बाद हम यहीं पर ही इसी स्थान पर आज के दिन मिलेंगे। कोई तारीख समय उन्होंने निश्चित किया और निश्चित समय के बाद वो चारों दोस्त वहां पर मिले आपस में। बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि काफी समय बाद मिले थे, और बस गांव में पगडंडी पर चले जा रहे थे बात करते हुए। तो बस रास्ते में चलते चलते उन्हें कुछ सड़क पर हड्डियां दिखाई दी, हड्डियां पड़ी हुई थी। तो एक दोस्त को एकाएक ख्याल आया, अरे भाई मैंने ऐसी कला सीखी है, मैं इन हड्डियों को जोड़ करके फिर जिस भी पशु की ये हड्डियां है मैं उसे पुनः उस पशु का रूप दे सकता हूं। तो उसने कुछ मंत्र वगैरह पढ़े, कुछ जो विद्या सीख करके आया था, और देखा एक जानवर का सा आकार हो गया। दूसरे को एकदम ख्याल आया कि अरे भाई मैं ऐसी शिक्षा प्राप्त करके आया हूं कि मैं इस जानवर में खून और जो ये मांस है इसमें वो संचार कर सकता हूं। उसने भी कुछ मंत्र विद्या वगैरह पढ़ी और वो शेर का रूप हो गया, उसमें हड्डियों का ढांचा ही नहीं रहा बल्कि उसके अंदर वो पूरा मांस आ गया और खून आ गया, और उस तरीके से, लेकिन प्राण नहीं थे, बस जैसे कि मृत प्राय जैसा वैसा ही पड़ा हुआ था। तीसरे को एकदम ख्याल आया, अरे मैंने ऐसी विद्या सीखी है मैं इसमें प्राणों का संचार कर सकता हूं। तो बस कुछ करने जा ही रहा था विद्या पढ़ने की, चौथे ने एकदम बोला, अरे भाई तुम क्या करने जा रहे हो तुम्हें मालूम है? तो उन्होंने बोला, अरे हमने जो शिक्षा प्राप्त किया हमने उसे टेस्ट किया है, इन दो ने तो टेस्ट कर ही लिया है, बहुत सक्सेसफुल है, सफल हो गए, अब मैं तीसरा टेस्ट करने वाला हूं और मैं भी ऐसे ही सफल होऊंगा, तुम भी फिर अपनी जो शिक्षा सीख के आए हो वो टेस्ट करना। तो उसने कहा कि नहीं वो तो ठीक है, हम हर एक को वो करेंगे, लेकिन अभी अगर तुम इसमें प्राणों का संचार कर दोगे तो क्या होगा, वो तुमने सीखा है समझा है? तो वो तो अपने नशे में थे, उन्होंने कहा भाई हाँ देखो इन दोनों ने करा है, मैं प्राणों का संचार करता हूं और टेस्ट करता हूं कि कहां तक सफल हूं। तो चौथे ने कहा ठीक है तुम उसे टेस्ट करो, मुझे थोड़ा चले जाने दो जरा दूर है। और वो थोड़ा दूर गया उसने और जाके पेड़ पर चढ़ के बैठ गया। अब क्या होता है, क्या हुआ होगा उसके बाद? हाँ बस समझ ही सकते हैं, जैसे उसमें शेर में प्राणों का संचार हुआ, उसने बाकी तीन थे उन्हें तो मार दिया, खा लिया, चौथा तो सेफ हो गया, चला गया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या शिक्षा मिली हा? कि हम जो भी हमने सीखा है, पढ़ा है, लिखा है, उसको हम अप्लाई जरूर करें, लेकिन परिस्थितियों के अनुकूल उसे अच्छी तरह सोच समझ के कि उसका रिजल्ट क्या होगा। कई बार क्या होता है, हम जोश में आके कुछ बोल जाते हैं, बाद में फिर अगर सोचते हैं उसी को पश्चाताप कहते हैं। पहले कर्म कर लिया आपने, अब बाद में सोचा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, उसी को पश्चाताप कहा जाता है। तो इसीलिए पहले अच्छी तरह सोचे समझे, उसके बाद अगर हम कर्म करते हैं तो पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। तो ये सकारात्मक चिंतन का एक सबसे बड़ा फायदा यही होता है जीवन में कि कभी भी पश्चाताप आपको नहीं करना पड़ेगा। अक्सर क्रोध ऐसा ही होता है, आवेश में आता है और क्रोध का अंत हमेशा पश्चाताप में होता है। तो इसीलिए जीवन के अंदर हमें ये समझ के चलना चाहिए किस प्रकार से, कि अगर सोचना हमारा ठीक होगा, वाणी भी ठीक होगी, कर्म और व्यवहार सब ठीक होंगे। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा है, मन के ऊपर ही सब कुछ कहा गया है। सोचना, सकारात्मक चिंतन हो, सोचने की बात हो, इसीलिए मन के लिए क्या कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत। मन चंगा तो कठौती में गंगा। गीता में भी कहा है, मन मना भव, मन मेरे में लगा। तन मना भव या धन मना भव या संबंध मना भव नहीं, मन मना भव। तो इसीलिए मन क्या है उसके ऊपर और अधिक विचार करते हुए हम यही विचार करेंगे कैसे इस मन को नियंत्रण में रखा जाए। जैसे राजा होता है ना, राजा के अंडर में प्रजा होती है। इसने किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि तू एक दिन भी जी, तू एक दिन भी जी, शहनशाह बन के जी, मत पुजारी बन के जी, खुद भगवान बन के जी। हम जीवन में ना पुजारी की तरह वो तो करते आए हैं, लेकिन हम खुद अगर शहनशाह होंगे, राजा होंगे, तो क्या होगा, ये सारी कर्मेंद्रियां हमारे नियंत्रण में रहे। बस जब कर्मेंद्रियां ये हमारे नियंत्रण में नहीं होते, हम कहते हैं क्या करें, मैं चाहता तो नहीं, क्रोध आ जाता है। यानी कि मैं आत्मा राजा हूं, लेकिन राजा अगर ये बोलता है कि मेरी ये प्रजा नियंत्रण में नहीं है, मेरा ये मंत्री, ये सेनापति ये नियंत्रण में नहीं है, तो वो राजा क्या हुआ। तो केवल कहने मात्र तक ही आत्मा राजा न रहे, आत्मा के नियंत्रण में हमारे ये आंख नाक कान हाथ मुंह मन बुद्धि संस्कार ये सब नियंत्रण में रहे। और ये तभी होगा जब आत्मा राजा अपने स्वस्थिति में स्थित होगी। इसीलिए अब हम ये देखते हैं किस प्रकार से हम आत्मा राजा इन मन बुद्धि संस्कारों को किस प्रकार से, इस तरह मन को बहुत नियंत्रण, मन बुद्धि संस्कार नियंत्रण में रहते हैं, किस प्रकार से हम अपने जीवन को और सुखमय शांतिमय बना सकते हैं। क्योंकि आज आवश्यकता इसी बात की है, आज का मनुष्य ना कि क्या हालत हो गई है। देखिए आज का मनुष्य वास्तव में जैसे मकड़ी के जाले में फंसा हुआ है, मकड़ी अपना जाला बुनती है, उसके अंदर फंस जाती है। तो आज का मनुष्य भी ये है कि बस जैसे कहते हैं ना, शुरू में व्यक्ति शराब पीता है या सिगरेट पीता है, पहले शुरू शुरू में एक दो बार पिएगा, बस कंपनी में एंजॉय करेगा। पहले मनुष्य शराब को पीता है और बाद में शराब मनुष्य को। कोई भी व्यसन होता है, कमजोरी होती है, पहले मनुष्य शुरू में हो सकता है थोड़ा एंजॉय करे, लेकिन बाद में वो ही कमजोरी मनुष्य को खा जाती है। तो इसी प्रकार से आज मनुष्य अपने बनाए हुए ही जाले, कौन सा जाला, ये जो हमारे मन के अंदर की कमजोरियां है, आज का मनुष्य जैसे ये देखो जाले में नाच रहा है, देख रहे हैं कैसे नाच रहा है, फिर से देखो ये किस लिए नाच रहा है, क्योंकि ये जो मनुष्य के अंदर के कमजोरियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ऐसे है तो बहुत, ये पांच मुख्य गाए जाते हैं, ईर्ष्या द्वेष परचिंतन परनिंदा आदि आदि बहुत हैं जो मनुष्य के अंदर की कमजोरियां हैं। और आज का मनुष्य इनके वशीभूत होने के कारण दुख और अशांति महसूस करता है। और इन सब की जड़ है नकारात्मक चिंतन। वास्तव में ये जो है कहा जाता है ना, आज का मनुष्य संसार में दो चीज है, राग और द्वेष। तो राग यानी प्रेम है ना, प्रेम बहुत अच्छी चीज है, प्रेम से रहना व्यवहार करना वाणी कर्म हरेक में। लेकिन जब इस प्रेम का रूप ही बिगड़ जाता है यही विकार बन जाते हैं। प्रेम बहुत अच्छा है लेकिन जब ये प्रेम अपने प्राप्तियों अपने शरीर की तरफ हो जाता है, ओ मैं धनवान हूं रूपवान हूं शक्तिवान हूं सत्तावान हूं इनके प्रति हो जाता है तो यही अहंकार का रूप ले लेता है। जब यही प्रेम अपोजिट सेक्स के प्रति हो जाता है वही काम विकार का रूप ले लेता है, दूसरे के शरीर की तरफ कर हो जाता है। जब यही प्रेम प्रॉपर्टी की तरफ धन दौलत मकान फ्रिज मोटर कार आदि इनकी तरफ हो जाता है यही लोभ कहलाने लगता है जो विकार है। जब यही प्रेम अपने पति पत्नी बच्चे माता पिता संबंधी की तरफ बहुत हो जाता है, उनके बिना हम रह नहीं पाते हैं, तो यही प्रेम कौन सा रूप ले लेता है, मोह का रूप ले लेता है। तो वास्तव में प्रेम का अगर यथार्थ अर्थ समझ के हम प्रेम पूर्ण व्यवहार करें बहुत अच्छी चीज है। इसीलिए कहा है पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। प्रेम यथार्थ रूप से अगर हमारे व्यवहार में आ जाता है वही सच्चा पंडित है सच्चा ज्ञानी है। लेकिन यही प्रेम का रूप जब बिगड़ जाता है यही विकार बन जाते हैं। तो ऐसे ही प्रेम का सच्चा रूप अगर होता है वो सकारात्मक चिंतन के रूप में आता है, और यही जब विकार के रूप में आने लगता है तो समझना चाहिए ये नकारात्मक चिंतन है। और इसी बात को हमारे शास्त्रों में और भी कहा है, संसार में अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं, उनको तीन भागों में मुख्यतः विभाजित किया जा सकता है। कौन से तीन, आधि व्याधि और उपाधि, तीन चीज है। शरीर का हो संबंधों का हो धन का हो समाज का हो परिस्थितियों का कुछ भी हो, आधि व्याधि उपाधि ये तीन प्रकार के, और इनका उपाय क्या है, समाधि। आधि व्याधि उपाधि सब प्रकार की समस्याएं इनके अंदर आती है और इन सब का सॉल्यूशन है समाधि। समाधि माने कोई घर गृहस्थी छोड़ के जंगल में चले जाना पहाड़ों पर, वो नहीं, मतलब मन को समाधिस्थ करना, बस प्रवृत्ति में रहना नौकरी धंधा करना घर गृहस्थी में रहना बच्चों की पालना सब करते हुए भी मन को हम समाधिस्थ कर दें, वो कला आज हम और सीखेंगे। और वो तो आप पिछले दो दिन से भी सीख रहे हो और आगे भी सीखते चलेंगे किस प्रकार से हम उस कला में और पारंगत हो जाते हैं। और जब ये इनसे मनुष्य बाहर निकलता है, कैसे बाहर निकलेगा, जैसे मोबाइल होता है ना, मोबाइल अगर डिस्चार्ज हो जाए तो क्या करते हैं, सारा दिन बात बात की और मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, बैटरी डिस्चार्ज दिखा रही है बात नहीं, क्या करते हैं फिर मोबाइल को, कैसे चार्ज करेंगे, पावर से प्लग लगा दिया मेन पावर हाउस से पावर आई ये चार्ज हो जाता है। ऐसे ही आत्मा रूपी बैटरी भी ना जब ये डिस्चार्ज हो जाती है तो क्या होता है, उसकी निशानी क्या है, व्यवहार में कुछ थोड़ा सा जैसे चिड़चिड़ापन, दूसरे की बात अच्छी न लगना, अपने को ही वो समझना कि बस मेरा बात सही है। जैसे मैं बता रहा था ना कैसे थे, बड़ा अच्छा लता की आवाज सुन रहे हैं, कोई अपने प्रिय सिंगर की सुन रहे हैं, लेकिन सपोज कैसेट चल रहा है और उसकी सेल से चल रहा है मानो, और सेल की रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो गई कमजोर हो गया, तो वही आवाज जो है वो करुण प्रिय नहीं लगेगी, वही आवाज रोने रोने जैसी लगेगी, फंस जाएगा जैसे पुराने जमाने में बताया रिकॉर्ड फंस जाता था। तो तब समझना चाहिए आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, यानी आत्मा में शक्ति की कमी हो गई है, तो फिर आत्मा को जैसे चार्ज करने के लिए आत्मा रूपी बैटरी को परमपिता परमात्मा से कनेक्शन जोड़ा जाता है। जैसे ये देख रहे हैं ना, ये व्यक्ति है और कितना खुश, परमपिता परमात्मा से जैसे अपना संबंध जोड़ रहा है। और परमात्मा से जब संबंध जितना जितना जुड़ता जाता है, आत्मा शक्तिशाली होती जाती है, तो जैसे वो अनुभव करता है कि मैं इस जाले से बाहर आ गया हूं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और ये जो मनुष्य के अंदर की कमजोरियां है जो उसके अंदर बसी हुई थी, वो सब धीरे धीरे बाहर चली जाती है और वो मनुष्य बहुत ही खुशी का, ये देखिए जैसे देख रहे हैं ना, शांति का, शक्ति का, इन सब चीजों का वो अनुभव करता है। और ये कब होगा? वो व्यक्ति जब उसका मेन पावर हाउस से कनेक्शन जुड़ जाता है बुद्धि का। वो योग की कला क्या है वो आप सीख भी रहे हैं और भी सीखेंगे आगे, तो इसके लिए और क्या क्या करना चाहिए, अब हम आपस में वो टिप्स सीखेंगे कि मन को सकारात्मक चिंतन में कैसे लगाएं, और मन सकारात्मक जीवन में सदा वो सीखता रहे। तो जीवन क्या है? एक हा? चार अक्षर से बना हुआ ये एक चीज है, लाइफ, LIFE। जीवन के लिए बहुत कुछ कहा गया है, जीवन है ना, ये जीवन एक यात्रा है, करते चलो जीवन में। इसीलिए जीवन कोई भी यात्रा होती है, मानो कार में आप यात्रा कर रहे हो, और यात्रा में तो दिन हो रात हो, यात्रा व्यक्ति करते चलते हैं, तो कार है, तो यात्रा में कार सुचारू चलती रहे उसके लिए क्या आवश्यक है? एक तो पेट्रोल आवश्यक है, और दूसरा साथ साथ बैटरी, क्योंकि बैटरी अगर चार्ज होती रहेगी वो भी ठीक है, तो लाइट, क्योंकि जब आप चलेंगे तो कार सुचारू रूप से यात्रा चलती रहे, तो लाइट और माइट, ये दोनों चीज आवश्यक है। माइट माने शक्ति, पेट्रोल डीजल जो भी है उससे वो चलेगी, और लाइट भी रात को अंधेरे में पूरा प्रकाश, जीवन की यात्रा सुलभ हो जाएगी, रास्ता आपको दिखता रहेगा, तो लाइट और माइट। इसी प्रकार से ये भी एक जीवन भी एक यात्रा है, इसमें भी लाइट और माइट, ज्ञान और योग, ये जो दो चीज आपको बताई गई, जितने लेक्चर हो रहे हैं ये सब है ज्ञान, और जो आपको प्रैक्टिकल कराया जा रहा है योग का अभ्यास, ये है माइट यानी शक्ति। तो जीवन के लिए बहुत बातें गई हैं, लेकिन साथ ही साथ सब परिभाषाएं वो हैं जैसा जिसने जीवन को जिस दृष्टिकोण से देखा। लेकिन एक जीवन की संपूर्ण परिभाषा और भी है, आप कहाँ है? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, ये विद्यालय है, विद्यालय में पढ़ाई जाती है ना, पढ़ाई पढ़ाई जाती है। एक प्रोफेसर भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी जीवन की एक परिभाषा की, सुनिएगा गौर से, क्योंकि एजुकेशन के हिसाब से कि जिंदगी है एक सेंटेंस, सुना है, जिंदगी है एक सेंटेंस, इसे खुद ही समझो, जवानी डैश बुढ़ापा कोमा, मौत को फुल स्टॉप समझो। सेंटेंस होता है ना, सेंटेंस में क्या होता है, डैश है, कोमा है, फुल स्टॉप है, तो जिंदगी है एक सेंटेंस, इसे खुद ही समझो, जवानी डैश तनी हुई, बुढ़ापा कोमा, बुढ़ापे में कमर जैसे झुक जाती है ना, कोमा जैसा बन जाता है, और मौत को फुल स्टॉप समझो। तो ये है वास्तव में एक परिभाषा, और अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। फुल स्टॉप का बहुत महत्व है, जो व्यक्ति जीवन में फुल स्टॉप लगाना जानता है ना, वो जीवन में सदा सक्सेसफुल होता है, सफल होता है। कई बार हम फुल स्टॉप नहीं लगा पाते, कोई बात है पुरानी याद करते चल रहे हैं, बात आती जा रही है, बस फुल स्टॉप। तो ये इसमें भी जीवन की बात बताई गई है, LIFE। इसके दो मुख्य पहलू हैं, क्या है, एक LI यानी लुक इंटरनली, एक है जीवन का आंतरिक पक्ष और दूसरा है जीवन का बाह्य पक्ष, फॉरवर्ड एक्सटर्नली जीवन में। आगे बढ़ते रहिए। तो एक है मेटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, एक है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, एक है भौतिकवादी पक्ष, एक है अध्यात्मवादी पक्ष। दोनों की जरूरत है। भौतिकवादी भी इसलिए जरूरत है भाई, जो भी नौकरी धंधा कर रहे हैं, पैसा कमाना है, मकान बनाना है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, ये सब भौतिकवादी पक्ष है, ये भी आवश्यक है जीवन में। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है कि जीवन में आगे बढ़ने के उसमें कई बार मनुष्य को स्ट्रेस का, टेंशन का, विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये आवश्यक है कि उसकी आंतरिक शक्तियां भी मजबूत हो। इसलिए लुक इंटरनली, आंतरिक पक्ष की ओर भी ध्यान दो, बाह्य पक्ष की ओर भी। जहां एक ही पक्ष होता है, सन्यासी है, मानो घर गृहस्थी छोड़ छाड़ के जंगल में चले गए, वो भी जीवन का क्या, उसमें परिस्थिति पेपर ही नहीं आएंगे, अगर पार ही नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा हम कितने शक्तिशाली हुए। आवश्यकता यह है कि दोनों पक्ष घर गृहस्थी में रहते हुए भी, सब कार्य करते हुए भी, हम आंतरिक पक्ष को मजबूत करें। तो ये जीवन के दो पक्ष हैं, लेफ्ट एंड राइट, दो टांग हैं। जैसे दो टांग पर चलना बड़ा सहज होता है ना, एक ही टांग हो चलने में उतना सहजता का महसूसता नहीं होगी। तो अगर दोनों पक्ष मजबूत नहीं होते हैं तो क्या होता है, जीवन में कई बार मायूसी, उदासी, निराशा, ये चीज आ जाएगी। जब कभी जीवन में ये आए तो समझना चाहिए मेरा कोई एक पक्ष बहुत कमजोर हो गया है। बाहर का पक्ष तो हमें तुरंत दिख जाता है, भाई रिसेशन आया, मंदी आई, फाइनेंशियल कमजोर हुआ, दिख जाएगा, पता चल जाएगा। बीमारी आई, पता चल जाएगा ये बीमारी है, इस कारण से उदासी निराशा आई, डॉक्टर ने बोल दिया अरे ये बीमारी हो गई, बहुत ऐसी विकट बीमारी है, तो वो तो पता चल जाती है। लेकिन जो आंतरिक पक्ष जब अगर हमारा कमजोर होता है ना, उसका उतना पता नहीं चलता। इस कारण से आवश्यकता है कि हमारे ये दोनों पक्ष मजबूत रहे। और नहीं है इसका मतलब मायूसी या उदासी है तो क्या बात है। इसीलिए किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, उसके अंदर ही भाव आ जाता है कि हो के मायूस नयो शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही पांव से चलोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही दोनों पांव से आगे बढ़ते रहिए। दोनों पांव माने एक है भौतिकवाद, एक है अध्यात्मवाद। भौतिकवाद, अध्यात्मवाद, दोनों का सहारा लेके हम चलते रहेंगे, जीवन में दौड़ लगाते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, हमारी सदा उन्नति रहेगी। लेकिन अगर एक ही पांव का, आज हम सब लोग मोटे रीति से भौतिकवादी ज्यादा हो गए, सारा दिन सुबह से लेकर रात तक भौतिक चीजों में ही हमारा समय, तन मन धन शक्ति सब कुछ उसी में चली जाती है, आंतरिक शक्ति के लिए हमारे पास समय ही नहीं रहता। तो इसीलिए हम अंदर से शक्तिशाली नहीं होते। बाहर से देखने में भले हमें मकान हो जाए, धन दौलत हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन आंतरिक रीति से हम कमजोर रह जाते हैं, जिससे जब भी कोई विकट परिस्थिति आई, पेपर आया, परीक्षा आई, कोई ऐसी विकट बीमारी आई, किसी नियर एंड डियर की कोई डेथ हुई, कोई बात हुई, हम एकदम निराशा के भंवर में फंस जाते हैं। तो आज आवश्यकता यह है कि दोनों बात जीवन में रहेंगी तो जीवन में कभी मायूसी नहीं होगी, एक बात। दूसरी बात, ये जो चार लेटर का है LIFE, इसमें बीच के दोनों शब्द क्या बयान करते हैं, क्या है ये बीच के दोनों शब्द, है IF, IF का मतलब इफ, इफ का मतलब यदि, काश। इफ डिनोट्स ये जो है पास्ट, इफ आई हैव नॉट डन दिस थिंग दिस वुड नॉट हैव हैपेंड, इफ आई हैव टेकन दीज स्टेप्स रिजल्ट्स वुड हैव बीन डिफरेंट, यदि काश अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता, अगर ये व्यक्ति बस अच्छा हो जाता तो मेरे जीवन में सुख शांति आ जाती, यदि ये परिस्थिति हो जाती तो आज मैं भी कुछ और होता, यदि यदि काश करके हम दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं, हम अपने को नहीं। वास्तव में ना जीवन में आज आवश्यकता, सकारात्मक चिंतन चाहते हैं, हमें अपने को देखना पड़ेगा। बचपन से हम बच्चे के अंदर से ये बीज बो देते हैं, दूसरा गलत है, परिस्थितियां खराब है, तुम बिल्कुल ठीक हो। छोटा बच्चा होता है, जैसे जब थोड़ा खड़ा होता है, चलना सीखता है, गिरेगा फिर चलेगा, देखा होगा एकदम छोटा बच्चा तो चलता है, अब मानो गिरा या कोई दीवार है, स्टूल किसी से टकराया, थोड़ा लगेगी उसे, गिरेगा, रोने लगेगा, माँ क्या करेगी, उसको दोष देगी, जमीन को मारेगी, है जैसे इसका दोष स्टूल है उसको मारेगी, यानी कि उसके माइंड में हमने प्रोग्रामिंग कर दिया बचपन से ही कि ये गलत है, इसकी वजह से तुम्हें चोट लगी, तुम बिल्कुल ठीक हो। और वो जीवन भर उसका ये प्रोग्रामिंग चलता रहता है कि भाई आई एम राइट, अदर इज रॉन्ग, ऐसी बात है ना। बस ये एक तो सब नकारात्मक चिंतन की जड़ है। संबंधों में कटुता आई, कोई बात हुई, वो ऐसा है, व्यक्ति खराब है, मैं तो अच्छा हूं, मैं ठीक सोच रहा हूं, वो गलत सोच रहा है। कोई भी चीज का नेगेटिविटी और नकारात्मक चिंतन का कारण यह है। आई एम ओके, इसी को ट्रांजैक्शनल एनालिसिस कोर्स होता है, उसमें बोला जाता है आई एम ओके यू आर नॉट ओके, तुम गलत हो, सही नहीं हो, मैं सही हूं। बस अपने को जब हम सही समझने लगते हैं तो जीवन में सारी व्यवहार, सारी कटुता है वो आने लगती है। तो इसीलिए अभी सकारात्मक चिंतन अगर हम चाहते हैं तो इसमें अभी हमें ये सोचना पड़े, सबको दूसरा भी सोच रहा है, हाँ भाई वो भी सही हो सकता है, उसको भी चांस दें, हर बात को हम उस हिसाब से सोच के चलते रहे। एक जीवन की ये कला है और इसके अंदर लाइफ है, बीच के दो शब्द है ना, इसीलिए पास्ट को हम बस, पुराने जमाने में भी एक घर चक्की होती थी ना, घर घंटी बोलते हैं, और बस वो चक्की चला के उसमें अनाज वगैरह डालते थे तो अनाज पिस करके निकल जाता था, उसी के लिए कबीरदास जी ने भी बोला है बहुत अच्छा, क्या पता, चलती चक्की देख के देख कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो ये दो पाट क्या है, यह है, एक है भूतकाल, एक है भविष्यकाल। या तो हम भूतकाल का चिंतन करते रहते हैं, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसको ये नहीं करना चाहिए था, उसने ये किया इसलिए ऐसा रिजल्ट हुआ, आदि आदि, या तो भूतकाल का चिंतन करते रहेंगे या भविष्य की चिंता करते रहेंगे, क्या होगा, बस इमेजिनरी, कहीं किसी को थोड़ी बीमारी हुई, कुछ भी बात हुई, अरे कहीं ये ना हो जाए, कहीं कैंसर ना हो जाए, कहीं फलाना ये ना हो जाए, जीवन में वो काल्पनिक चिंताएं भी हम बहुत करते चले जाते हैं। तो या तो भूतकाल और भविष्यकाल, ये दो पार्ट है, इन दो पार्टों की मनुष्य बीच में मनुष्य आज पिस जाता है। दो पार्टन के बीच में साबुत बचा न कोई, और खूट पकड़कर जो रहा उसे पीस सका ना कोई। चक्की होती है ना, जिसके चारों तरफ वो चक्की घूमती है, तो खूंट पकड़कर, वो खूंट क्या है, वो है वर्तमान, प्रेजेंट, जिसके चारों तरफ होती है। और आपने देखा होगा जिन्होंने वो चक्की, घर की चक्की चलाई है, देखा है, वहां जो अनाज होता है वो थोड़ा साबुत रह जाता है, वो पिसता नहीं है, वो मोटा साबुत रह जाता है, बाकी अनाज जो दो पाटन के बीच में आता है वो पिस जाता है। ऐसी आज का मनुष्य भी ना, भूतकाल और भविष्य काल के उसमें तो पिसता चला जाता है। और जो तो ये हमें शिक्षा देता है, हम सदा वर्तमान में रहे, प्रेजेंट, इसीलिए उसे प्रेजेंट बोला गया है। प्रेजेंट मींस गिफ्ट, बर्थडे पार्टी, मैरिज पार्टी में जाते हैं, प्रेजेंट ले जाते हैं ना, तो वो गिफ्ट है, हमारा जीवन भी एक गिफ्ट बन जाएगा। ईश्वर ने जो हमें ये जीवन दिया है, ये गिफ्ट बन जाएगा अगर हम वर्तमान में जीना सीखे, तो हमेशा वर्तमान में ही जिए। आप सब अभी वर्तमान में जी रहे हैं या पास्ट में या फ्यूचर में, कैसे है, वाकई शरीर के रूप से तो आप वर्तमान में हैं, यहाँ हॉल में बैठे हैं, अभी बैठे बैठे ही हम कहीं बम्बई पूना या कहीं उधर चले गए, जहां से हैदराबाद, जहां से भी आए हैं, यानी कि मैं पास्ट में चला गया, या फ्यूचर में, अरे भाई कभी ये लेक्चर खत्म हो एक डेढ़ बजे तो हम खाना खाने जाएं, अभी से फ्यूचर में पहुंच गए, यहां बैठे बैठे तो फ्यूचर में, तो यू कैन नॉट एंजॉय द प्रेजेंट। प्रेजेंट को, वर्तमान को अगर एंजॉय करना है तो हम हमेशा तन मन बुद्धि से वर्तमान में जिए, क्योंकि अगर हमने वर्तमान अच्छा बना लिया ना तो क्या होगा, यही वर्तमान कल पास्ट हो जाएगा। आज कौन सी तारीख है, मानो 27th है, अब कल 28 तारीख को ये 27 तारीख में जो बीता वो पास्ट हो जाएगा। तो आज जो प्रेजेंट है हमने उसे अच्छा बना लिया, और कल हम जब 28 में जाएंगे तो जो आज अच्छा बना लिया तो प्रेजेंट अच्छा है तो पास्ट भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो आज प्रेजेंट है वही कल पास्ट हो जाएगा। तो प्रेजेंट और पास्ट जिनका अच्छा होगा उनका फ्यूचर भी ऑटोमेटिकली अच्छा होता चला जाएगा। तो इसीलिए हम प्रेजेंट को अच्छा बनाते चले, बस प्रेजेंट को प्रेजेंट की तरह, गिफ्ट की तरह देखते चले, ये एक सकारात्मक चिंतन की एक विशिष्ट कला है। तो इसीलिए प्रेजेंट होके हम आगे बढ़ते रहेंगे, बस ये जीवन का अगर हमने मूल मंत्र एक पढ़ लिया तो क्या होगा, जीवन हमारा एक प्रेजेंट और गिफ्ट जैसे बन जाएगा। और साथ ही साथ क्या करते चले, क्योंकि ये सोचने की कला जो है ये माइंड का है, तो इसीलिए मनुष्य के मन जो है एक बहुत बड़ी शक्ति है, इस शक्ति को हम बहुत कम यूज करते हैं। वैज्ञानिकों ने दिखाया कि मन आत्मा का एक हिस्सा मन है और मन ब्रेन के द्वारा कार्य करता है। हम अपने सोचने की शक्ति और ब्रेन का हार्डली सम 10-12% यूज करते हैं, पूरे जीवन भर में 90% अनटैप्ड चला जाता है, व्यर्थ चीजों में चला जाता है। तो इसीलिए मन की, आइंस्टीन बहुत बड़ा वैज्ञानिक होके गया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्या क्या उसने वैज्ञानिक वो दिए तथ्य, लोगों ने सोचा कि ये तो बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, इसने तो मन को और अपने ब्रेन को बहुत यूज किया होगा। तो जब उसकी डेथ हुई तो लोगों ने उसके ब्रेन की एनालिसिस की साइंटिस्ट ने, तो नॉर्मल केस में 12-13% यूज करते हैं, उसने 15-16% यूज किया था, थोड़ा ज्यादा तो था लेकिन फिर भी अबाउट 85% अनटैप्ड एनर्जी, इतनी हमारे अंदर शक्ति है लेकिन उस शक्ति को हम यूज ही नहीं कर पाते हैं। तो सकारात्मक चिंतन अगर होगा तो मन के अंदर जितनी भी शक्तियां हैं ना हम उनको बहुत अच्छी तरह यूज करते चलेंगे। इसीलिए ये शक्ति को हमें अच्छी तरीके से पहचानना चाहिए। इसीलिए कहा है मन के हारे हार है मन के जीते जी, धन के हारे नहीं कहा, तन के हारे नहीं कहा, लेकिन मन के, मन हमारा कभी भी हारना नहीं चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हम मन को निराश न होने दें, इसका विशेष भाव यह है। इसीलिए मन को एक घोड़ा जैसा भी कहा गया, मन जो है भाई घोड़ा है, चंचल है, भाग जाता है। तो अब आवश्यकता यह है जितना जितना हम मन को अगर ये समझेंगे ना कि ये शरीर, आत्मा जो है, आपको सुना होगा कल से बताया होगा, आत्मा ड्राइवर है और शरीर क्या है, कार है, मोटर है या रथ है, आत्मा रथी है। इसीलिए ये रथी जो है इस रथ को चला रहा है। अब वंडर है, देखो ये है ड्राइवर, ये सब है मोटर, लेकिन क्या करें, इस ड्राइवर के कंट्रोल में ये मोटर नहीं रही है। जिस्म और रूह का एक अजीब इत्तफाक देखा कि उम्र भर साथ रहे फिर भी रूबरू ना हो सके। जिंदगी भर इस जिस्म के अंदर ये रूह रहती है, जिंदगी भर साथ रहते हैं हम, जब से बच्चा गर्भ में आता है माता के तब से ही आत्मा की प्रवेशता हुई जैसे मानो, और जीवन भर साथ रहे फिर भी इस रूह के कंट्रोल में ये जिस्म नहीं है। बस न चाहते हुए भी मन कुछ सोचता है, कर्मेंद्रियां कुछ और कर्म कर लेती है। तो इसीलिए आवश्यकता यह है कि इन दोनों को अच्छी तरह पहचान करके और इस बात को समझे कि आत्मा कंट्रोलर है और ये शरीर उसके नियंत्रण में चलने वाले हैं। तो इसीलिए ये घोड़ा शरीर, मन को हम चंचल कह के छोड़ न दें, लेकिन मन अगर घोड़ा है, बुद्धि क्या है, उसकी लगाम है। तो इसीलिए घोड़ा लगाम से कंट्रोल में रहता है। तो इसीलिए बुद्धि रूपी लगाम के द्वारा मन रूपी घोड़े को हम जितना कंट्रोल में रखेंगे पूरा हमारे नियंत्रण में ये शारीरिक ये कर्मेंद्रियां पूरी रहेंगी और तब सच्चे अर्थों में मन जीते जगत जीत, उसको हम चरितार्थ कर सकेंगे। और साथ में क्या है, वास्तव में कहा जाता है ना, ये मन घोड़ा है, भगवान ने तो बनाया था मनुष्य को अपनी कल्पना में भाई सबसे श्रेष्ठ प्राणी। बस कहते हैं जब ब्रह्मा जी बना रहे थे, सब सृष्टि का निर्माण हो रहा था, सब पशु पक्षी जीव जंतु बनाए उन्होंने, फिर मनुष्य को भी बनाया, फिर भगवान ने सोचा मैं ऐसा बनाऊं मनुष्य को जो सारे प्राणियों जीव जंतु सबका हितैषी होकर रहे, एल्डर मेंबर, घर का जो बड़ा सदस्य होता है ना, अपने सब छोटे सदस्यों का ख्याल रखता है, उनकी पालना करता है। तो इसलिए भगवान ने मनुष्य को जब बनाया सोचा ये बड़े प्यार से रहे, सब पशु पक्षी जीव जंतु सबको वसुधैव कुटुंबकम की भावना से रहे, तो क्या करा भगवान ने, मनुष्य को बनाया। और कहते हैं हाँ, कि भगवान ने मनुष्य बड़ा प्रेम से रहे, मीठा बोले, भगवान ने मनुष्य को जो जवान दी ना, कैसी जवान दी, बहुत मीठी, मीठा व्यवहार करे। और इसी बात को किसी ने कवि ने बड़ा अच्छा कहा है कि कुदरत को नहीं थी मंजूर, कुदरत को नहीं थी मंजूर सख्ती इंसान में, इसलिए खुदा ने नहीं बनाई हड्डी जवान में। भगवान ने हड्डी नहीं बनाई, क्यों, क्योंकि हड्डी होगी तो कड़क चीज होती है और कड़ा बोलेगा मनुष्य, दूसरे को दुख होगा। तो भगवान चाहते थे प्रेम से रहे, तो भगवान ने जीव देखो कितनी फ्लेक्सिबल है, जीव में हड्डी है नहीं है, तो कुदरत को नहीं थी मंजूर सख्ती इंसान में, इसलिए खुदा ने नहीं बनाई हड्डी जवान में। लेकिन आदमी तो बड़ा क्रिएटिव है, उसने कहा कि कोई बात नहीं भगवान जी, आपने नहीं बनाई, मैं बिना हड्डी के ही काम निकाल लूंगा। हा? तो बिना हड्डी के ही वो ऐसी ऐसी बातें, कड़ा बोल देता है, क्रोध कर लेता है, दुश्मनी भाव पैदा कर लेता है और संबंधों में तनाव कटुता आ जाती है। इसीलिए कहा है किसी ने, आपको बोला भी हो किसी ने, टंग जवान, टंग हैज गॉट नो बोन बट इट ब्रेक मैनी बोन्स। जवान में हड्डी नहीं होती है लेकिन बहुतों की हड्डियां तोड़ देती है, ऐसे है। कोई कटुता बोली बहुतों का दुख हो जाता है, शांति होती है। हम भी कह देते मोटे भाव में, क्या करें भाई, मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन मुंह से ये शब्द फिसल गए, शब्द निकल गए, ऐसा मैं चाहता नहीं था ये करना, ये हो गया। क्यों, क्यों फिसल गई जवान। घर में भी फिसलने का ज्यादा स्कोप कहाँ होता है, ड्राइंग रूम है, डाइनिंग रूम है, बाथरूम है, किचन है, कहाँ, बाथरूम गीली जगह है, ज्यादा फिसलने का स्कोप वहां होता है, आदमी फिसल जाता है। अब बिचारी ये जवान जो है सूखी जगह में या गीली जगह में है, कहाँ है, वो क्या है, है? तो वेरी राइटली कह देते हैं क्या करें, जवान फिसल गई है। लेकिन वास्तव में जवान नहीं फिसलती है, सबसे पहले मन फिसलता है। क्रोध आएगा मन में आएगा, जब मन में क्रोध आता रहा, आप पालना करते रहे, क्रोध और बढ़ता रहा, उसके बाद फिर जवान में आता है। और जब जवान पे भी और नियंत्रण नहीं रहा, बहुत रहा, तो कर्म के अंदर भी आ जाता है क्रोध। तो हर चीज की जड़ ही मन है, इसीलिए कहा गया है मन के लिए, वार इज फर्स्ट फॉट इन माइंड देन ऑन द बैटल फ्रंट। युद्ध भी पहले मन में लड़ा जाता है, फिर लड़ाई के मैदान में लड़ा जाता है। एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस, फर्स्ट इन द माइंड देन ऑन द एक्चुअल फ्रंट। हर चीज का निर्माण दो बार होता है, पहले मन में, अपने मन, मकान बनाना है अपना, पहले मन के अंदर मकान का निर्माण होता है, भाई मकान ऐसा हो, मन के अंदर होगा फिर नक्शे पर आएगा, यहाँ ये ड्राइंग रूम है, डाइनिंग रूम है, किचन है, आदि आदि वो सब, फिर वास्तविक रूप से मकान बनता है। हर चीज का आधार मन है, तो इसीलिए ये मन को और साथ साथ कैसे करते चले, ये इसके अंदर इसीलिए कहा गया है। जब मन को हम नियंत्रण में कर लेते हैं ना, तो क्या होता है, इसी बात के ऊपर ही पूरा भारतीय संस्कृति, पूरे शास्त्र, विश्व भर के साथ सब कुछ इसी बात पर बने हैं, मन के ऊपर। और इसीलिए कहा है वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ही हमारा परिवार है। क्यों कहा? केवल ये नहीं कि मनुष्य मनुष्य, हिंदी चीनी भाई भाई या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, नहीं, गौर से देखिए सब वसुधा ही कुटुंब है, हमारा परिवार है पृथ्वी। तो वसुधा कैसे है परिवार? बच्चा होता है, हा? जब बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा, माँ ही उसका संसार है, बस माँ की छाती से ही लगा रहता है, दूध मिलता है, अब बस बच्चे की पालना वहीं से होती है। ऐसे ही हमारे परिवार के, विश्व परिवार के सबसे छोटे सदस्य कौन है? ये वृक्ष, पेड़ पौधे, बस धरती माता से जीवन पर्यंत वहीं लगे रहते हैं। जैसे छोटा बच्चा माँ की छाती से लगा है, ऐसे पृथ्वी पर पेड़ पौधे लगे हैं, ये वसुधैव कुटुंबकम का सबसे छोटे सदस्य हैं। जीवन भर जहां बीज लगा दिया, पेड़ वहीं लगा रहता है। फिर बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, कैसे चलना सीखता है? दो हाथ दो पैर से ऐसे आगे चलता है, चार से। ऐसे ही जो पशु हैं, चौपाए हैं, चार टांग से चलने वाले हैं, वो हमारे परिवार के सेकंड यंगेस्ट मेंबर है। यंगेस्ट मेंबर, सबसे छोटे सदस्य पेड़ पौधे, दूसरे छोटे सदस्य चौपाए, गाय भैंस घोड़े जितने जानवर हैं, चौपाए ये सब हमारे वो है। और फिर बच्चा और बड़ा जब हो जाता है, दो टांग से चलना सीख जाता है, तो दो टांग से सीखता है, चलता है। तो मनुष्य हम सब जो हैं इस वसुधा, इस परिवार के एल्डेस्ट मेंबर है, सबसे बड़े सदस्य हैं। हमारे ही छोटे परिवार के जो सदस्य हैं वो पशु पेड़ पौधे ये सब हैं। तो उनके प्रति हमारी कितनी मधुर भावना होनी चाहिए, पालना की भावना, न कि पेड़ पौधों को काटने की भावना, न पशु पक्षी जीव जंतु उनको काटने की मारने की भावना, नहीं, हमारे परिवार के यही तो वसुधैव कुटुंबकम है। इसीलिए ये हमारी संस्कृति बहुत ऊंची संस्कृति है। दूसरी बात, परिवार के अंदर भी कटुता क्यों होती है? हमारी भारतीय संस्कृति सिखाती है, उसने एक मंत्र दिया है, मूल मंत्र कौन सा? जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। सबको जीने का अधिकार है। आज जो पाश्चात्य संस्कृति है, वेस्टर्न फिलॉसफी वगैरह है, उनका मंत्र क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिटेस्ट है उसे ही जीने का अधिकार है। ये तो जंगल रूल है। जंगल में क्या होता है? बड़ा जानवर होता है, अपने से छोटे जानवर को खा जाएगा, छोटा अपने से और छोटे को खा जाएगा। केवल जो बड़ा है, शक्तिशाली है, शेर जंगल का राजा, उसी को ही जीने का जैसे एक जंगल में अधिकार है। ये तो जंगल रूल है, केवल जो शक्तिशाली है धन से तन से या मन से, बाकी सबका क्या होगा? इसीलिए हमारी संस्कृति कहती है जियो और जीने दो। बस हमारे परिवार के अंदर भी ये भावना अगर आ जाए ना, परिवार में सदा मधुरता बनी रहेगी, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, मनभेद नहीं होगा, मतभेद नहीं होगा, ना बाप बेटे में, ना सास बहू में, ना भाई भाई में, कुछ नहीं। जब हम भी यही कहते हैं जियो और जीने दो, हर एक को अपने ढंग से जीने का अधिकार है। लेकिन हम क्या चाहते हैं? सास बहू भी साथ चाहेगी, बहू मेरे अंदाज से जिए, जो मैं कहूं वैसा करे। बाप बेटे के अंदर भी यही होगा, बाप कहेगा अरे मेरे पास इतना जीवन का अनुभव है, खजाना है, बच्चे का ये लाइन ठीक नहीं है, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए, रात दिन नेट पर बैठ के कंप्यूटर पे वो नहीं करनी चाहिए सर्फिंग। बच्चा सोचेगा अरे पिताजी को क्या मालूम, उनके जमाने में तो ये कंप्यूटर होता ही नहीं था, है? और इसके द्वारा क्या? तो बस संबंधों में कटुता आने लगती है। जियो और जीने दो, ये अगर हमारी फिलॉसफी जीवन में व्यवहार में आ जाएगी, परिवार में ही सदा मधुरता बनी रहेगी। तो इसीलिए आवश्यकता ये बात की है कि हम मन के अंदर इस बात को अगर पक्का कर लेंगे तो क्या होगा, हमारे व्यवहार के अंदर भी ये सब बातें आती रहेंगी। और साथ साथ इसीलिए इसी के साथ साथ ही है मन, और क्या है मन? भी एक सोचने की शक्ति का, उसका नाम है आई, जब हम कहते हैं ना विचार, थॉट आते हैं तो मन के अंदर ही विचार आते हैं। इसीलिए इस सोचने की शक्ति को हम और शक्तिशाली बनाए। और क्या है मन के अंदर है? मन के ये अलग अलग शक्तियां, इसमें मन का एक काम है सोचने का, थिंकिंग पावर, और क्या है मन का दूसरा काम है फीलिंग, महसूस करना। किसी ने बड़े प्रेम से बोला, प्रेम की भाव के सुखद अनुभूति करते हैं, किसी ने अपमान किया, दुख दिया, वो दुख की फीलिंग होती है। हम सब इन बातों से परिचित हैं। तीसरा मन का काम है कल्पना करना, इमेजिनेशन। हम बैठे यहाँ है, यहाँ बैठे बैठे ही जहां पर हमारा मन का संबंध होगा वहां मन से हम पहुंच जाएंगे। यहाँ बैठे ही अगर याद आ रहा है कोई बच्चे की बात, कोई पोते पोती की बात कहीं पर, तो बैठे हम यहाँ हैं लेकिन मन हमारा वहां अपने आप पहुंच जाएगा। इमेजिनेशन, जहां न पहुंचे रवि, क्या बोलते हैं, वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। अनुभव भी एक ऐसी चीज है कि बस कवि की तो फिर भी कल्पना है, लेकिन अनुभव ऐसी चीज है वो कभी धोखा नहीं देती। आपने रसगुल्ला खाया है, मीठा होता है, दूसरा जितना भी बोले नहीं रसगुल्ला कड़वा होता है, आपने अनुभव किया है आपने मीठा है, तो आप उस बात पर पक्के रहे। तो इसीलिए ये जीवन के, ये मन के अलग अलग है कि सोचना, फील करना, इमेजिन करना और विचारों का निर्माण करना, फॉर्म आइडियाज, ये मन के और अलग अलग बात है। और साथ साथ आपको बताया होगा ना कितने प्रकार के विचार मन में आते हैं, कितने आते हैं विचार, अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं, मन सोचता है और ये विचार अलग है। एक है कौन से विचार, पॉजिटिव सकारात्मक चिंतन के विचार। फिर कौन से सकारात्मक चिंतन, सबसे सहज, आप सब जानते हैं, आपको कल के लेक्चर में वो बताया गया, आत्मा का लेक्चर, कौन से सकारात्मक विचार। आत्मा के कितने गुण बताए आपको, हाँ जरा फिर से बोलिए कौन कौन से गुण है, हाँ, शांति, सुख, शक्ति, पवित्रता, आनंद, ज्ञान और प्रेम। सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान और शक्ति, ये आत्मा के गुण है। बस इनसे जो भी चीज गवर्न होती है इनके आधार पर वो सकारात्मक चिंतन है। जहाँ शांति की बात है, शांति का व्यवहार है, वो सकारात्मक चिंतन। प्रेम की बात, आनंद की बात, पवित्रता की बात, ये सब है सकारात्मक चिंतन। इनके द्वारा, इनके साथ साथ जो चिंतन चलता है, और इनके विपरीत जो चिंतन चलता है वो क्या है, वो है नकारात्मक चिंतन, नेगेटिव थॉट्स। सुख की जगह किसी को दुख देने का विचार, शांति की जगह अशांति के विचार, प्रेम की जगह घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, वो विचार चले, पवित्रता की जगह अपवित्रता के विचार, नेगेटिविटी के, आनंद के, सुख शांति आनंद पवित्रता, प्रेम, प्रेम की जगह घृणा ईर्ष्या आदि के विचार, ये जितनी है इनके विपरीत वो समय नेगेटिव विचार। और क्या है साथ, तीसरे हैं विचार कौन से, वेस्ट थॉट। कौन से वेस्ट थॉट्स, वेस्ट थॉट्स वो हैं जो हम पास्ट में चले जाते हैं, पुराने, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, जो बात हो गई वो तो हो ही गई, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो वेस्ट माने व्यर्थ, ये नहीं होना चाहिए था, क्यों हुआ ऐसा, कैसे हुआ, और बस उसी पुरानी बात में रमण करना, वो है वेस्ट थॉट्स। और चौथे प्रकार के विचार कौन से है, वो है आवश्यक थॉट्स। जीवन में जो चलते हैं, भाई घर गृहस्थी का काम है, नौकरी है, धंधा है, पैसा कमाना है, जो भी जीवन के आवश्यक विचार हैं वो चलते ही है जीवन में, उसी के आधार पर कर्म होता है। इसीलिए इन सब विचारों को सही रीति से जानना, समझना, करना, वो जब समझ जाते हैं, समझ आ जाती है, तो जैसे निगेटिव विचार चलेगा ना, आपको तुरंत आएगा, अरे भाई ये तो वहां ब्रह्मा कुमारी आश्रम में माउंट आबू गए थे, उन्होंने बताया था, मेरे मन में बदला लेने का विचार आ रहा है, उसके प्रति ईर्ष्या आ रही है, ये तो नेगेटिव विचार है, बस आप उसको वहीं स्टॉप कर सकेंगे। पहले तो हम इसे नेचुरल समझते थे कि अरे ये तो नेचुरल है, आ रहा है तो आ रहा है, लेकिन थोड़ा विचार आता है, हम उसको अगर शुरू में ही बंद कर देंगे ना, वो विचार बहुत समय तक नहीं चलेगा, नहीं तो बहुत समय तक वो चलेगा, हमारी अंदर की शक्ति को वो छीन कर देगा, कमजोर बना देगा हमें। इसीलिए जहां भी निगेटिव विचार की शुरू बात हो, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध की बात, क्रोध मुंह से निकले उससे पहले मन में ही जब आता है ना, उसी समय ही अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो फिर न वाणी से निकलेगा न कर्म में व्यवहार में आएगा। इसीलिए आवश्यकता इस बात की है, पहले उस बात को समझना, ये कौन सा पॉजिटिव विचार है, निगेटिव है, आवश्यक है या व्यर्थ विचार है, और जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे फिर हम उन विचारों पर सहज ही नियंत्रण कर सकेंगे। और ये फिर और कैसे पहचानेंगे कि यह विचार हमारा कैसा चल रहा है, क्या है, विचारों की गति से, स्पीड ऑफ द थॉट। आप देखो अभी जब आपको बहन जी योग कराती हैं, लाल लाइट जल गई, अब बहन जी कमेंट्री दे रही है, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, तो कितने विचार धीरे धीरे और कम चलते हैं। धीरे माने कोई वॉल्यूम में धीरे नहीं, लेकिन स्पीड ऑफ थॉट, विचारों की गति जो है बहुत धीमी हो जाती है, और जितना जितना गति बढ़ती जाए उतना उतना समझना चाहिए कि हमारे विचार जो है ना वो और निगेटिव की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जब इसमें ये देखिए चार प्रकार के विचारों का बताया गया है, जब पॉजिटिव विचार होंगे बहुत स्टिल, बहुत कम गति होगी, और साधारण विचार होंगे, ऑर्डिनरी विचार, थोड़ा और ज्यादा स्पीड होगी, जब और थोड़ा वेस्ट विचार जैसे होंगे और गति तेज, जब कोई चैलेंजिंग सिचुएशन हो बहुत ज्यादा विचार आने लगते हैं। मानो अभी आप यहां बैठे हो, सडनली कोई फोन ऑफिस से आता है या घर से आता है जहां से, अरे भाई ये घटना हो गई, कोई अच्छी घटना नहीं, दुर्घटना टाइप की हो गई, बस आपके मन के विचारों की गति बढ़ जाएगी। मानो किसी का एक्सीडेंट का सुना, बस मन के अंदर बहुत विचार आ जाएंगे, अरे ये क्या, मानो आपका पोता है रोज स्कूल से आ जाता है शाम को 4 बजे, आज 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, नहीं आया, और आपने फोन किया स्कूल में, बोला यहां से तो भाई समय पर वो चला गया, बस मन में विचार क्या हुआ, कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं कहीं आतंकवादी तो उठा के नहीं ले गया, बहुत मन के अंदर इतने विचारों की गति हो जाएगी कि बस मन जैसे पागल हो जैसा हो जाएगा। तो जब विचारों की गति बहुत तेज हो, समझना चाहिए वो निगेटिव विचार है, वो विचार बहुत हमें उधर की तरफ, नीचे की तरफ ले जा रहे हैं। फिर क्या करें, ऐसे में समझना चाहिए विचार आएंगे उनको कैसे स्टॉप करें। इसमें जैसे रात का अंधेरा होता है ना, तारे जगमगाते हैं, दिन में भी वो तारे रहते हैं लेकिन सूरज के प्रकाश में वो दिखाई नहीं देते, जब सूरज छिप जाता है तो रात के अंधेरे के प्रकाश में वो दिखाई देते हैं, जगमग करते हैं। ऐसे ही समझना चाहिए कोई परिस्थिति अगर जीवन में आती है, पेपर आता है, परीक्षा आती है, तो तब पता चलता है मेरे अंदर शक्ति कितनी है। नॉर्मल केस में अगर बैंक बैलेंस है, ठीक है आपका बैलेंस वहां रखा है, लेकिन कोई पेपर आया, परिस्थिति आई, कोई घर में सेरेमनी है, कोई भी बात है, आपको अगर बैलेंस है तो सेटिस्फेक्शन रहेगा, चलो भाई मनी विड्रॉ करके काम हमारा हो जाएगा। ऐसी अगर अंदर की शक्तियों का स्टॉक हमारे पास जमा होगा, जो शक्तियां अभी आपने पहले सहन शक्ति, समाने की शक्ति आदि आदि, ये इनका स्टॉक होगा हमारे पास, तो विपरीत परिस्थितियों में हम इनको विड्रॉ करके हम परिस्थिति का सफलतापूर्वक सामना कर सकेंगे। इसीलिए ये समझना चाहिए कि बस डार्क अंधेरा भी होता है ना, तो जीवन के अंदर हमारा कोई भी परिस्थिति होती है, कोई इवेंट खराब या अच्छा नहीं होता, हम उसे किस दृष्टिकोण से देखते हैं वो उसे अच्छा या खराब बना देता है। जैसे तारे जगमगाते हैं, वो हमारे अंदर जो शक्तियां हैं हमें तभी पता चलेगा मेरे अंदर ये शक्ति है, और तभी पता चलेगा इस शक्ति की कमी है, फिर हम उस शक्ति को और धारण करने का और पुरुषार्थ करेंगे। तो जीवन में हमें उस रीति से, इसीलिए कहा गया है कर्म कर्मण्यवादी का रस्ते माफलेशु कदाचन। इसका भाव क्या है जो मोटे तौर पर ले लेते हैं, वो भाव नहीं कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा नहीं करो, नहीं, कर्म तो हम करते ही तब हैं जब फल हमारे माइंड में होता है। कोई भी बात होती है भाई मैं ये करूंगा तो उससे मुझे ये प्राप्ति होगी, फल माइंड में होता है तभी तो कर्म अच्छा होता है। विद्यार्थी को मालूम है मैं मेहनत कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, फर्स्ट क्लास आऊंगा, जीवन में सफलता मिलेगी, आगे बढ़ूंगा, लेकिन भाव क्या है इसका, कर्म करो वाइल डूइंग एक्शन इन्वॉल्व योर सेल्फ फुली, उसमें मन बुद्धि से हर रीति से फुली इन्वॉल्व हो, वाइल इन एक्शन प्रोफेशनल कमिटमेंट हो, लेकिन वाइल एक्सपेक्टिंग द रिजल्ट डिटैच इमोशनली, भावनात्मक रीति से हम अपने को डिटैच कर लें जब रिजल्ट की बात हो। फल की इच्छा ना करो, नहीं, फल तो जो आएगा वो आएगा, लेकिन इमोशनली अगर मैंने डिटैच कर रखा होगा भावनात्मक रीति से तो क्या होगा, अगर रिजल्ट मेरी इच्छा के अनुरूप नहीं भी आया तो भी मैं डाउन टू बॉटम एकदम नीचे एकदम नहीं आ जाऊंगा, क्या होगा। इसलिए अगर डिटैचमेंट, गीता में भी उसी बात को विशेष बल दिया हुआ है, तो वाइल परफॉर्मिंग एक्शन फुली इन्वॉल्वमेंट एंड वाइल एक्सपेक्टिंग रिजल्ट फुली डिटैच्ड, इससे क्या होगा, जीवन में सदा सफलता की ओर बढ़ते रहेंगे, कोई भी परिस्थिति हमें दुखी या निराश नहीं करेगी, हर परिस्थिति में हम सदा आगे ही बढ़ते रहेंगे। और ये डिपेंड करता है किस बात पर, हमारे एटीट्यूड के ऊपर। हाँ, जो आपको बताया भी गया था उसमें ना, मानो मैं आपके घर में आया, गर्मी में आ रहा हूं, प्यास लगी, आपने मुझे पानी दिया, अब आधा गिलास भरा है आधा खाली है, अब उसे दो रीति से सोच सकते हैं, बड़ा सहज रीति से उस दिन भी आपको बताया गया था, अगर हम ये सोचेंगे अरे आधा खाली आधा ही गिलास पानी दिया, कैसे इससे प्यास बुझेगी, तो ये एक प्रकार का चिंतन है। और अगर इसके विपरीत, गिलास तो वही आधा भरा आधा खाली है, अगर हम जीवन में भरा वाला हिस्सा देखेंगे, ओ आधा गिलास भरा हुआ, उससे क्या होगा, वो कैसा चिंतन है, हाँ पॉजिटिव, क्यों, जीवन में भी ये देखो मेरे पास क्या है, कितना मैं भरा हुआ हूं। अगर मैं यही सोचता रहा अरे मेरे पास तो स्कूटर है, पड़ोसी पे तो मारुति कार है, मेरा तो दो फ्लैट का, दो कमरे का फ्लैट है, उसका तो बंगला है, उस पे ये है ये है ये है, दूसरे का अगर हम देखते रहेंगे ना, हम कभी खुश नहीं रह सकते जीवन में, अपना भरा हुआ सब मेरे पास ये है, भगवान ने ये भी दिया हुआ है, इतना है। हाँ, कंपेयर करके हम जीवन में आगे बढ़ने का लक्ष्य रखें, लेकिन अगर हम सदैव दूसरे का ये देखते रहे मेरे पास ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है, मैं हमेशा दुखी निराश हताशा महसूस करता रहूंगा। इसलिए जीवन में आवश्यकता ये एटीट्यूड अपने को पॉजिटिव बनाए। देखें, मुझे याद आती है एक डॉक्टर की बात, एक मेडिकल कॉलेज था, एक प्रोफेसर साहब क्लास करा रहे थे, वो बता रहे थे कि भाई शराब पीने से क्या नुकसान होता है, बड़ी सिंपल बात उन्होंने सब बताया पहले स्टूडेंट्स को, फिर एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, क्या दिखाया, उन्होंने एक गिलास में पानी लिया, एक गिलास में अल्कोहल ली, शराब ली, बस कांच का गिलास था, वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने करा, पहले पानी का गिलास लिया, एक छोटा सा कीड़ा पकड़ा पानी में डाल दिया, अब कांच का गिलास था, सब स्टूडेंट ने देखा कीड़ा तैरता रहा घूमता रहा चलता रहा, और इट वॉज हेल एंड हेल्दी, कीड़े को निकाल के फिर मेज पर रखा, कीड़ा चलने लगा जैसे नॉर्मल स्वभाव। फिर प्रोफेसर साहब ने उसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, दूसरे गिलास जिसमें अल्कोहल थी शराब थी वही कीड़े को उस गिलास में डाला, कीड़ा अंदर गया, थोड़ा अंदर जाके जरा झूमने लगा, वाह आप सब लोग भी खुश हो गए सुन के, झूमने लगे, क्योंकि स्वाभाविक है उसके पेट में भी एक आध बूंद चली गई होगी, लेकिन थोड़े समय के बाद क्या हुआ, कीड़ा एकदम शांत हो गया। प्रोफेसर साहब ने उसको हिलाया, हा? कीड़ों में कोई जीवन नहीं था, निष्प्राण हो गया, मर गया था। और केवल मरा ही नहीं, धीरे धीरे उसका शरीर घुलने लगा शराब के अंदर, इतना तेज इफेक्ट। और ये दिखा के प्रोफेसर साहब ने स्टूडेंट से पूछा, हा? इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो स्टूडेंट सोचने लगे, एक स्टूडेंट ने हाथ खड़ा किया कि हाँ हाँ बताओ सर, वेरी सिंपल, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि हम अल्कोहल कंज्यूम करेंगे, शराब पियेंगे, तो हमारे पेट के सब कीड़े वीड़े मर जाएंगे और हम हेल्दी रहेंगे। क्या यही शिक्षा मिली है? जो गायन है ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा हमारा सोचने का ढर्रा होगा हम संसार को वैसा ही देखेंगे। मैंने अगर लाल चश्मा लगाया होगा मुझे सब लाल लाल नजर आएगा। तो इसीलिए अगर मेरा अपना दृष्टिकोण नेगेटिव होगा मुझे सब चीज नेगेटिव ही दुखी नजर आएगी। इसलिए अपने दृष्टिकोण को हम सदा पॉजिटिव रखें। जीवन के अंदर हमारा लक्ष्य ये रहे, जितना मेरा दृष्टिकोण पॉजिटिव होगा उतना उतना संसार हमें अच्छा नजर आएगा। हर व्यक्ति के अंदर हमें गुण नजर आएंगे, नहीं तो अगर मेरे अंदर नेगेटिविटी होगी, मुझे दूसरे सब व्यक्ति ही नेगेटिव, वो ऐसा है वो ऐसा है, तो हम अपने को नाप सकते हैं मेरे कैसे विचार चल रहे हैं। अगर हर व्यक्ति में मुझे नेगेटिविटी नजर आ रही है, इसका मतलब मैं खुद भी नेगेटिव हूं। इसीलिए अब हम जितना अपने को हम पॉजिटिव बनाते चलेंगे जीवन के अंदर, उतना हम आगे बढ़ते चलेंगे, खुशी की महसूसता करते चलेंगे। और ये जितना हमारे मन में जो होता है वो हमारी वाणी से नजर आता है, व्यवहार से है? मछली होती है ना, मछली को मारने पकड़ते हैं ना, मछली कब कांटे में फंसती है, कब फंसती है? जैसे वो मुंह खोलती है, कांटे में कोई कीड़ा वगैरह लगाया होता है और मछली जैसे उसको खाने को जाती है ना, फंस जाती है। बस ऐसे ही जीवन में जैसे हम मुंह खोलते हैं, यानी बोलने के लिए तो मुंह खोलना पड़े, जैसे हम मुंह खोलते हैं बोलते हैं, कहीं ना कहीं समस्या क्रिएट होने के चांस रहते हैं। इसलिए अभी आवश्यकता क्या है, इसमें कहा गया है हमारे शास्त्रों में, साइलेंस इज गोल्डन एंड स्पीच इज सिल्वर। साइलेंस, मौन जो है वो सोने की तरह है, स्पीच सिल्वर की तरह है। इसीलिए यहां पर भी एक स्लोगन मिलता है, कम बोलो धीरे बोलो मीठा बोलो, सोच के बोलो। बस वो भी एक स्लोगन आप लिटरेचर में मिलता है, ले जाएंगे लगाएंगे तो अपनी वाणी को भी हम कंट्रोल में रखेंगे, उससे हमारी एनर्जी भी बहुत प्रिजर्व होगी। मुझे एक बात याद आ रही है कि हस्बैंड वाइफ में थोड़ी तकरार हो रही थी, वाइफ बोलती जा रही थी, हस्बैंड सुन रहा था, वाइफ बार बार बोल रही थी ये जवाब दो, बोलो मैं ये बोल रही हूं, वो नहीं बोल रहा था, शांत था। वाइफ का गुस्सा और बढ़ रहा था, उसने क्या करा, पास में मोबाइल रखा था और गुस्से में तो क्रोध में आदमी को अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता है, उसने मोबाइल उठाया और क्रोध में माइंड पर तो कंट्रोल रहता नहीं, मोबाइल फेंक करके मारा हस्बैंड की तरफ, फेंका, उसने कैच कर लिया, गिरने नहीं दिया उसे, सेफ रहा मोबाइल। फिर और उसका गुस्सा भी और बढ़ा, अरे मैं ये पूछ रही हूं ये बात बोलो तुम। फिर हस्बैंड ने बोला, मोबाइल कैच कर लिया था, इनकमिंग फ्री, मोबाइल है ना, इनकमिंग फ्री, यानी कि तुम बोलते जाओ, मेरे लिए तो वो इनकमिंग है, फ्री है, इसलिए बोलने की बात नहीं। कहने का भाव क्या है कि घर के अंदर भी बहुत परिस्थितियां होंगी जब आपस में कभी क्रोध की सिचुएशन हो, कभी ऐसी मन मुटाव की बात हो, संबंधों में कटुता हो, हमारा लक्ष्य यह रहना चाहिए कि उस बात को हम लाइट कर दें। एक बोल रहा है, दूसरा और बोलेगा, फिर पहला और बोलेगा, इससे तकरार बढ़ती जाएगी। इसीलिए आवश्यकता हो अगर किसी बात को हम कम करना चाहते हैं तो मन के अंदर ना हमारी परिस्थिति ऐसी हो कि हमारा मन इतने नियंत्रण में हो कि वो बात हम कोई उसका रिस्पॉन्ड उस वक्त ना करें, क्रोध के वक्त, नहीं तो वो बात और बढ़ती जाती है जीवन में। इसीलिए जीवन के अंदर हमारा ये एटीट्यूड रहे कि हर परिस्थिति को हमें डाइल्यूट करना है, तनाव बढ़ने नहीं देना है, जितना तनाव जीवन में कम रहे। ये सब कुछ टिप्स है सकारात्मक चिंतन के लिए, क्योंकि चिंतन होगा व्यवहार अच्छा होगा, व्यवहार अच्छा होगा वो चिंतन, ये एक सर्किल की तरह है। तो अगर नेगेटिव चिंतन होगा, नेगेटिव बोल होगा, नेगेटिव व्यवहार होगा, फिर नेगेटिव और बढ़ेगा, फिर और व्यवहार नेगेटिव होगा, फिर और बढ़ेगा नेगेटिव, लड़ाई झगड़ा कटुता बढ़ती जाएगी। और चिंतन अगर सकारात्मक होगा तो व्यवहार भी सकारात्मक, वो और चिंतन को सकारात्मक बनाएगा, और व्यवहार धीरे धीरे करते करते निगेटिविटी नकारात्मकता जीवन से एकदम खत्म हो जाएगी। इसीलिए इसके लिए ये जो कुछ टिप्स आपको बताई जा रहे हैं ना, ये जैसे जीवन में पतंग, हा? पतंग तो सबने उड़ाई होगी, तो पतंग कब ऊपर जाती है, जो हवा होती है पतंग उड़ाने में भी और मजा आता है, पतंग और ऊंचे जाती है। इसीलिए क्या समझना चाहिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, तूफान को तोहफा समझो, जीवन रूपी पतंग भी और ऊपर जाएगी, महान हमारा जीवन होता जाएगा अगर हम तूफान प्रॉब्लम समस्या आएंगे उनको ये समझे ये तो परीक्षा का पेपर है, प्रभु इच्छा है, तोहफा है ईश्वर की तरफ से, उसे पॉजिटिव रीति से लेंगे तो पॉजिटिव वे में उसे डील करेंगे और पॉसिबिलिटी यही मैक्सिमम है कि फिर हम उसमें सफल हो जाएंगे, वो परीक्षा परीक्षा जैसी नहीं लगेगी। इसीलिए जीवन में यही समझना चाहिए कि जीवन रूपी पतंग हमारी और ऊंची जाए और हम जीवन में महान बनते जाएं। और साथ साथ क्या करें, पांच उंगलियां तो भगवान ने हाथ में भी नहीं बराबर बनाई है, तो इसीलिए सारे मनुष्य तो एक जैसे हो नहीं सकते। अब समझना ये चाहिए कि हमारा ना विचार महान हो। अब देखो ये व्यक्ति चला तो रहा है साइकिल लेकिन मजा ले रहा है कार का, जैसे मैं शेवरलेट कार चला रहा हूं, मैं बड़ी अच्छी टोयोटा कार चला रहा हूं, थिंकिंग तो स्मॉल प्लेजर बट बिग थॉट्स, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग जैसे बोलते हैं ना, विचारों में महानता होगी तो हमारा जीवन ऑटोमेटिकली महान बनता चला जाएगा। इसीलिए विचारों में हम देखते चले हमारा विचार सकारात्मक हो, सब समाज पूरा एक जैसा हर एक तो कहीं पर हो ही नहीं सकता, इसीलिए वैरायटी को भी हम एंजॉय करते चले, ये वैरायटी है, बस हम अपने विचारों से और आगे बढ़ते चले। साथ साथ और क्या है, हर मनुष्य जब पैदा होता है ना, हर मनुष्य के पास दो शक्तियां विशेष होती हैं, एक है याद रखने की शक्ति, एक है भूलने की शक्ति, हर मनुष्य पर यह होती है। लेकिन ट्रेजेडी क्या है लाइफ की, कि जो बात वो याद रखना चाहता है वो तो भूल जाता है, और जो बात भूल जानी चाहिए वो बरसों तक याद रहती है उसे, भाई ये ट्रेजेडी है, और यही निगेटिविटी की जड़ है। आपने मेरे साथ कोई व्यवहार किया, 10 बार आपने अच्छा व्यवहार किया, उसे तो मैं भूल गया, वो याद रहनी चाहिए, लेकिन एक बार आपका व्यवहार थोड़ा ऐसा था, कोई टेंशन में आप थे, परिस्थिति ऐसी थी, वो मुझे याद रह गया, अच्छा देखो इनका भी व्यवहार ऐसा हो गया, वो बात मुझे बार बार रहती रहेगी। क्यों होता है, क्योंकि जब हम व्यक्ति को ना माफ नहीं कर पाते, व्यक्ति का कोई व्यवहार वो उस बात को भूल जाना चाहिए, जहां भूलने की शक्ति है वहां माफ करने की भी शक्ति है, क्षमा की शक्ति है, क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं, क्षमा वीरों का भूषण है कायर का व्यवहार नहीं, जो कायर होगा वो क्षमा नहीं कर पाएगा, जो वीर होगा महावीर होगा गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी मदर टेरेसा, देखो बच्चा है माँ है, बच्चा छोटा कोई भूल भी कर देगा माँ तुरंत माफ कर देगी, उस बात को दिल में नहीं रखते, क्यों, क्योंकि क्षमा करने की शक्ति है, नादान है बच्चा। दूसरे को अगर हम उस दृष्टिकोण से देखेंगे कि जब आप यहां से जाएंगे ना लोग आपसे बहुत एक्सपेक्ट करेंगे, अरे भाई ब्रह्मा कुमारी इसके पास से वहां होके आए हो, बड़ी अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी होंगी, अब वहां जाके भी अगर वैसे ही हम क्रोध करते रहे तो वो कहेंगे अरे क्या सीख के आए वहां से। तो इसीलिए अपने ऊपर स्वनियंत्रण ऑटोमेटिकली आपके आता जाएगा अगर इस तरफ ध्यान रहेगा, तो इसीलिए ये स्थिति होनी चाहिए, हम किसी को भी देख के क्षमा कर सके। ये महानता का लक्षण है और ये कोई कमजोरी की बात नहीं है। ओनली महान व्यक्ति ही क्षमा कर सकते हैं। और क्या है? देखो आजकल हर एक कोई हेल्थ कॉन्शियस हो गया ना, तो स्वामी रामदेव का भी आता है हेल्थ के लिए, ये प्राणायाम करो, ये आसन करो आदि आदि, तो टीवी वगैरह में दिखाते हैं भाई हाँ ये शीर्षासन करो। लेकिन क्या कहते हैं, नकल के लिए भी क्या चाहिए? अकल चाहिए। ठीक है, टीवी में देख रहे हैं आप शीर्षासन करो, लेकिन अब आप रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे देख रहे हो और वहीं पर ही शीर्षासन करने लगे तो क्या होगा? तो नकल करो, लेकिन नकल के साथ साथ और क्या करो, अकल का भी प्रयोग करो। ये है। तो साथ ही साथ और क्या है, इसमें कोई भी बात होती है इस संसार में, टेंशन स्ट्रेस तो आ जाता है, कोई भी काम करने के लिए टेक टाइम टू थिंक, सोचो, और उसमें योर टेंस मोमेंट क्या होता है। मुझे आजकल तो क्रिकेट का भी वनडे मैच भी होता है ना, ऐसे एक वनडे मैच इंडिया पाकिस्तान का हो रहा था, एक आदमी ने ऑफिस से छुट्टी ली और मैच देख रहा है, बस आराम से बैठा, मुंह में सिगरेट लगी हुई है, ये टीवी देख रहा है, बड़ा बढ़िया मैच चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का फाइनल मैच। थोड़ी देर में उसकी मिसेज आई, कहा भाई ये बच्चा है छोटा, मुंह में बॉटल दूध की लगी हुई है, कि भाई ये दूध भी पीता रहेगा, इसे खिला लो बिठा लो और मैं घर का काम कर लेती हूँ। तो उसने कहा ठीक है, अपना बच्चे को गोदी में लिया, टीवी भी देख रहा है, सिगरेट पी रहा है, बच्चा दूध पी रहा है, आराम से वो मैच को एंजॉय कर रहा है। थोड़ी देर में बच्चा सो गया, तो बच्चा सो गया तो बच्चे को उठा के उसने पास में रख दिया, बोतल भी निकाल के उसके थोड़ा रख दी और बस मैच देख रहा है, एंजॉय कर रहा है। 45 ओवर हो गए, 50 ओवर का मैच और इंडिया पाकिस्तान की बड़ी क्लोज टसल चल रही है, कोई भी जीत सकता है। हाँ, कुछ रन चेस कर रहा है एक कंट्री और कुछ ओवर रह गए हैं, कुछ पेयर लास्ट सेकंड लास्ट पेयर चल रहा है। इतनी देर में बच्चा रोने लगा, जग गया। अब बच्चा तो जग गया रोने लगा, उसका ध्यान तो सारा बुद्धि में है, बच्चे को थोड़ा थपथपाया लेकिन बच्चा रोया रो ही रहा है, चुप नहीं हो रहा है। तो जल्दी जल्दी में क्या करे, वो बच्चा उठाया और देखो बॉटल तो अपने मुंह में लगा ली और देख रहे हैं ना, हाँ सिगरेट बच्चे के मुंह में। टेंस होता है ना जब माइंड, तब दिमाग काम नहीं करता जल्दी जल्दी, क्योंकि बुद्धि कहीं और होती है। यही परिस्थिति जैसे अभी आप सब हंस रहे हो, यही परिस्थिति हम सब के साथ भी होती है। जब हम लोग टेंशन में आ जाते हैं कोई काम, तो हम तो टेंशन में आ जाते हैं और दुनिया हंसती है देख करके, जैसे अभी आप हंस रहे हो ना। तो इसी तरीके से, तो इसलिए अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रहे, परिस्थिति ना आए जो तनाव पैदा हो। और अगर तनाव आए भी, उस तनाव को हम बहुत कम से कम समय में उस तनाव पर विजय प्राप्त करके जीवन को में आगे बढ़ जाए। तो इसीलिए ऐसी परिस्थिति से सदा बचे रहना आप, हा? ऐसा मौका ना आए कि दूसरे हमें देख करके हंसे। और ये कब होगा, अभी आप यहाँ आए हो ना, अभी आए हो आप, ट्रेन में आए होगे, कोई कार से, कोई बस से, कोई फ्लाइट से। अभी आप जब जाओ यहाँ से, आप सभी फ्लाइट से जाना, हाँ एयर से। कैसे जाएंगे? हाँ, चिड़ियाएं जो होती है ना, वो कोई टिकट लेती है उड़ने की? नहीं, पक्षी जो होते हैं। आप भी जब यहाँ से जाओ तो क्या करना, हाँ इस तरीके से उड़ते हुए जाना जीवन के अंदर। ये आपको दो पंख मिल रहे हैं यहाँ से। कौन से दो पंख मिल रहे हैं? ज्ञान और योग। और साथ ही साथ ज्ञान योग के साथ जीवन में उमंग और उत्साह उल्लास, ये जीवन में सदा कायम रखना खुशी, ये जो जीवन के दो पंख हैं। इन पंख के आधार पे आप उड़ते रहेंगे ना, जीवन में कभी निराशा ना आए। और वो तभी होगा जब ज्ञान और योग बुद्धि में रहेगा, जीवन सदा आगे बढ़ता रहेगा, तो ऐसे उड़ते रहेंगे आप। और इस उड़ने के साथ साथ कि ये कब होगा, ये जब योग है, यहाँ पर आपको योग की तो सारी बातें बताई जा रही हैं, इसीलिए मैं उन पर विशेष नहीं जाना चाहता, लेकिन ये योग की परिस्थितियां, जो योग की स्थिति है, ये जीवन में सब परिस्थितियों पर कैसे विजय प्राप्त करा देती है, ये आपको आपको अगले लेसन्स में और भी बताया जाएगा किस प्रकार से ये राजयोग मेडिटेशन ये जीवन जीने की एक कला है। और ये है बस हमारा सारा दिन रात होता है ना, रात को सोते समय क्या करना चाहिए, हाँ सोने समय आप बस अपना दिमाग जैसे बिल्कुल शांत होकर के सोएंगे तो क्या होगा, नींद बहुत अच्छी आएगी। लेकिन कैसे करें, अक्सर करके सोते समय ही सारे दिन की घटनाएं और वो याद आती है, तो दिमाग को कैसे खाली करें, हाँ जैसे इसमें ये खोपड़ी का ढक्कन खोल दिया, ऐसे खोल सकते हैं अपना ढक्कन खोपड़ी, हाँ खोल, रात को सोते समय जो दिन भर के व्यर्थ विचार है, निराशा के विचार है, तनाव के विचार है, उन सब को जैसे कचड़े के बॉक्स में डाल के सो जाओ। इसका भाव क्या है, कोई ना ऐसे कोई ढक्कन खोपड़ी का खुल सकता है, ना ये डाल सकते हैं फिजिकली, लेकिन सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट योग करके सो, राजयोग का अभ्यास। उससे क्या होगा, दिमाग पूरा जैसे कि ना सारे दिन भर के विचारों को हम खाली करके, और जब सोएंगे बहुत कम समय में भी बहुत कई घंटों की नींद का आभास हो जाएगा, एकदम फ्रेश होके अगले दिन जब उठेंगे बिल्कुल फ्रेश होंगे, और उस फ्रेशनेस से बस जीवन शुरू करेंगे तो सारा जीवन पूरा वो रहेगा। तो अभी आप जाने से पहले क्या करिएगा, यहां से ये अलग अलग, बस जब आप जाए यहां से कुछ ऑडियो कैसेट लेके जाइए, कोई वीडियो कैसेट लेके जाइए, जो ये शिविर की बातें बताई जा रही हैं, ये प्री रिकॉर्डेड कैसेट सब मिलते हैं, वो लेकर के जाइए, कुछ लिटरेचर लेके जाएंगे, तो जीवन में कभी भी निराशा हो, जैसे ये बताया ना, कभी ऐसी निराशा हो, कोई ऐसी परिस्थिति आए, उसमें इन सब चीजों का मदद ले लीजिए, लिटरेचर का, कभी अपना ऑडियो कैसेट लगा दी, वीडियो, बिल्कुल फिर से फ्रेश हो जाएंगे और जीवन फिर से आपको खुशी, आनंद, शक्ति, उन सब की अनुभूति कराएगा। और ये आज का सेकंड लास्ट स्लाइड, हाँ आत्मा के अंदर 7 जो बताए ना गुण, इतने शक्तियां, ये सब हमारे खजाने हैं, सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता ज्ञान शक्ति, ये सब हमारी प्रॉपर्टी है, खजाने हैं। ताला भी हमारा ये बहुत बड़ा लगा हुआ है, फिर भी ये खजाने लीक आउट हो जाते, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं जो चेन है ना, ये चेन टूटी हुई है, जैसे खजाना है, चेन है, लॉक है, सब है, लेकिन चेन की कोई कड़ी टूटी हुई होगी तो चोर लूट के ले जाएगा। ऐसे ये जो चोर है, वीकनेसेस है हमारी, काम क्रोध लोभ मोह, ये जैसे हमारे इन खजानों को लूट लेते हैं, तो क्या करना चाहिए, किस प्रकार से ये चेन को हम स्ट्रांग करें, और ये जितना चेन हमारी ये स्ट्रांग होगी ना, उतना उतना हम जो है इन खजानों की सुरक्षा कर सकेंगे। तो आज आवश्यकता ये, अब जाने से पहले आप क्या करना, कि यहां पर भी बॉक्स रखा है, बाबा का कमरा भी है, तो जो भी आपके अंदर वीकनेस हो, जहां कड़ी टूटी हुई हो, पहले आप उसे आइडेंटिफाई करिए। हर व्यक्ति अपना जानता है, कोई कहेगा भाई हाँ मुझ में क्रोध बहुत है, क्रोध की वजह से, कोई समझेगा भाई मेरे में ईर्ष्या है, किसी को अंदर महसूस होगा अहंकार है मेरे में, जिस वजह से मेरे अंदर के ये खजाने लुट जाते हैं, तो क्या करेंगे, वो आप आइडेंटिफाई करिए खुद, 2 मिनट एकांत में बैठ के और एक कागज के पीस पर आप लिख दीजिए, हे प्रभु हे भगवान, आज आपके दरबार में मैं अपनी ये कमजोरी छोड़ के जा रहा हूं, मैं क्रोध छोड़ के जा रहा हूं, मैं अहंकार छोड़ के जा रहा हूं, जो भी आपको लगे ये मेरे अंदर कमजोरी है, ये मेरे आगे बढ़ने में बाधक है, वो आप सच्चे दिल से लिख करके डालेंगे। हमारे पास ये अनुभव है, ऐसे ऐसे चेन स्मोकर, एक सिगरेट से दूसरी सिगरेट जलाते थे, 20-25 डिब्बी सिगरेट पीते थे, यहाँ आके उन्होंने सच्चे दिल से ना, ये प्रभु मैं आपको अर्पण करके जाता हूँ, आज उस बात को 15 साल 20 साल 25 साल भी गुजर गए उन्होंने सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। ऐसे एक नहीं दो नहीं सैकड़ों उदाहरण है जो अपने मन की कमजोरी को छोड़ के यहां गए और सदा विजयी हो गए। लेकिन सच्चे और साफ दिल से अनेक उससे इरादे से आप ये लिख करके बाबा का कमरा है बॉक्स रखा है वहां पर उधर बस डाल दीजिए। अगर आपको ये लगे अरे भाई मेरे ये वीकनेस कैसे पता दूसरों को ना चले तो अपना नाम भी भले लिखे या ना भी लिखे कोई जरूरत नहीं ना नाम लिखने की या जगह लिखने की। ईश्वर के पास तो सब जैसे ऑटोमेटिकली पहुंचता है। बस उससे आप देखेंगे आपके अंदर इतनी शक्ति का संचार हो जाता है कि उस चीज के ऊपर आप सहज ही विजय प्राप्त कर लेते हैं। और ये आज का लास्ट स्लाइड है? गणपति बापा मौर्य बोलते हैं ना गणपति को विजय का प्रतीक। तो इसीलिए आज सब आप विजयी होकर के जा रहे हैं। ये आपका आज का तारीख याद रखना नया बर्थडे सारी कमजोरियां छोड़ के जैसे नया जन्म आपका हो रहा है तो ये छोड़ के जाएंगे और गणपति समान बनने के लिए इनकी 5-6 बातों को धारण कर लें। ये समरी है क्या क्या इनकी बातें हैं। एक बात ये है क्या है बड़ा सिर गणपति का किस बात का सूचक है बड़े विचारों का। आज से जाने के बाद निगेटिव विचारों को जीवन में स्थान न दें। वो ऐसा है उसने ये करा ये है निगेटिव विचार नहीं मुझे पॉजिटिव बनना है बस पॉजिटिव चिंतन। एक ये है थिंक पॉजिटिव। दूसरी बात कि बड़े कान गणपति का वो रखेंगे ना गणेश जी का चेहरा ध्यान में सब बात बड़ा सिर बड़े विचारों का प्रतीक। बड़े कान खुले कान इस बात का प्रतीक क्या रहना संसार में है संसार की बात सुननी लेकिन सुनो सबकी और करो मन की। अपना जो यहाँ सीख करके जा रहे हैं वो कोई दूसरों से किनारा नहीं कर लेना नौकरी धंधा घर गृहस्थी से छोड़ के नहीं जाना कान खुले रखने लेकिन जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो सच क्या है असत्य क्या है वो। छोटी आंख गणेश जी की छोटी आंख है वो इस बात का प्रतीक है। जब घर में भी आप पूजा कीर्तन भजन वगैरह करते हो आंख बंद होने लगती है। अब आंख बंद करके तो सारा दिन कार्य व्यवहार कर नहीं सकते तो क्या करना है कि कर्म योगी बनना है। आंख खोलनी भी है इसीलिए यहाँ आंख खोल के योग का अभ्यास कराया जाता है। बहन जी जब कहते हैं ना तो आंख खोल के रखो तो आंख खुली रहेगी तो स्कूटर भी चलाएंगे कार चलाएंगे या साइकिल या घर में रोटी पका रहे हैं या कपड़े धो रहे हैं लेकिन बुद्धि से ईश्वर को याद करना है। तो कर्म आंख बंद करके तो कर नहीं सकते तो छोटी आंख जो है कर्म भी करना और योग में भी रहना कर्म योग का प्रतीक ये छोटी आंखें हैं नैरो। और साथ साथ और क्या है इसके साथ साथ नैरो आईज फिर लंबी नाक हाँ इस बात का प्रतीक है। किस बात का कि जैसे कुत्ता या कोई जानवर होता है सूंघता सूंघता चलता है और जहां पर कीड़ा आया सॉफ्ट आया फट से पंजा मारा अपने शिकार को पकड़ लेता है। तो इसीलिए ये किस तरीके से हमें समझना है कि हमें रहना नाक श्वास का प्रतीक है ये जीवन का प्रतीक है। तो जीवन में हमें सदा जो कमजोरियां हैं परिस्थितियां उनको मारना है उनका सामना करके उन पर विजय प्राप्त करनी है और जीवन में सदा खुशी उमंग उल्लास से आगे बढ़ते चले जाना है। साथ ही साथ छोटा मुंह इस बात का प्रतीक है कम बोलने का। और साथ साथ बड़ा पेट किस बात का प्रतीक है गणेश जी का अब पेट का टर्न आ रहा है ना जाने का समाने की शक्ति का। इसके अंदर जैसे पेट में भोजन समाता है ऐसे हमें दूसरे की कमी कमजोरियों का हम वर्णन ना करें। कोई भी संसार में ऐसा नहीं है संपूर्ण हो इसीलिए सब देखते हुए भी उनको हम समाते रहें। घर में भी क्या होता है कभी जो होते हैं ना हमारी बच्ची होती है घर का कोई प्राणी होता है कोई कमी होती है हम सारे मोहल्ले में सब जगह वर्णन थोड़ी करते हैं। लक्ष्य रहता है इस बात को छुपाए दबाए अपने लोगों का। ऐसे पूरा संसार हमारा है हर एक की कमी कमजोरी का किसी का वर्णन नहीं करेंगे समाएंगे तो सारे संसार के प्रिय बनते जाएंगे। इसीलिए लक्ष्य जीवन में ये रहे, कोई भी बात को पुराने कमजोरी की बात को फैलाना नहीं। इस रीति से ये आज का पूरा सार है चिंतन की कला, सकारात्मक चिंतन की कला। इन बातों को ध्यान में रहेंगे तो हम सकारात्मक जीवन में होते जाएंगे, और जितना जितना सकारात्मक होते जाएंगे उतना उतना जीवन में सफलता को प्राप्त करते जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। किसी का कोई प्रश्न हो तो बाद में पूछ सकते हैं, अभी समय हो गया है और है? तो इसीलिए बस अभी जो है हम सब चलते हैं, और चलते चलते अभी तो आपकी क्लास ये रहेगी ना, इन बातों को आप सुन के छोड़ नहीं देना। एक तो यहाँ कैसेट मिलती है, वो सब 3 दिन की कैसेट का मिलेगी। और उससे पहले मैं एक प्रोफेसर की बात को जस्ट बता देता हूँ कि एक प्रोफेसर साहब थे, वो अखबार पढ़ रहे थे, बिजी थे अखबार पढ़ने में। उनकी मिसिज आई, चाय का एक कप रख गई, चीनी रख गई। प्रोफेसर साहब बहुत तल्लीन थे, उन्हें ख्याल नहीं रहा कब उनकी 2-3 साल की बिटिया आई चम्मच। वो बच्चे क्यूट होते हैं, बच्चे चीनी चम्मच की में एक भरी चाय में डालती, दूसरी चम्मच चीनी से भरी चाय में डाल दी, तीसरी भरी चाय में डाल दी। प्रोफेसर साहब तो अखबार पढ़ने में तल्लीन थे, उन्हें ख्याल नहीं था। जब कई चम्मच डाल दी तो प्रोफेसर साहब का ध्यान गया, अरे अरे बेटे ये क्या कर रहे हो, चीनी तो बड़ी, चाय तो बहुत मीठी हो जाएगी। तो बच्ची ने बड़े इनोसेंट भाव से कहा, पापा ये कैसे मीठी होगी, जब तक आप इसे हिलाएंगे नहीं तब तक तो मीठी नहीं होगी, आप चाहो तो पी के देख लो। तो बच्ची का दिल रखने के लिए प्रोफेसर साहब ने ऊपर से ही एक चम्मच चाय की ली और पी, तो वाकई फीकी थी। फिर प्रोफेसर साहब ने उसे मिलाया, उसके बाद चाय पी तो बहुत मीठी हो गई थी। ये हमें क्या शिक्षा देती है कि आप जो अभी यहाँ पर हो, आपके रोज सुबह से शाम तक कई चम्मच चीनी की पड़ रही हैं। अभी इससे पहले हमसे पहले सुमन बहन के क्लास चीनी चम्मच नंबर 1, कोई दूसरा शीलू बहन की क्लास, उषा बहन की क्लास, अलग अलग है, जितने क्लासेस हो रही हैं सब चीनी तो पड़ रही है, लेकिन चाय मीठी कब होगी? अगर आपने बस डायरी में लिखा और ले जाके कमरे में रख दिया, टाइम नहीं मिला, हिलाया नहीं, तो जीवन में मिठास नहीं आएगा। कब आएगा मिठास? रात को थोड़ा 5 मिनट भी निकाल करके दिन में उसको थोड़ा पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, और उसके बाद जीवन में अभ्यास होता जाएगा, तब आपके जीवन में मिठास आता जाएगा। तो इसीलिए जाने से पहले आप ये जरूर करें। ओम शांति, ओम शांति।